कि ये हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इन चीजों के लिए तैयार भी है कि नहीं है, कि जब आप ये अपने सारे रूल्स जो हैं ये ब्रॉडन करते जा रहे हैं। जस्टिस मिनिस्टर आरिफ विरानी जो है उन्होंने लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2023 में ये कहा था कि ये सारी रिकमेंडेशंस जो हैं कमेटी की उसके ऊपर ये गौर कर रहे हैं। कचर साहब ने जो है उन्होंने फिर से एक दफा कहा है कि जी गवर्नमेंट जो है उसको हमें बताना चाहिए कि भाई ये जो केस टू केस बेसिस पे ये जो इनका एक्सेस है और इसके ऊपर और फर्दर क्या काम किया जा रहा है। और वो एक्सपेक्ट उन्होंने वो करते हैं, वो कहते हैं जी कि कनाडा के जो अटॉर्नी जनरल हैं मुझे लगता है कि वो जो चार्टर है उसको वो मानते हुए इनके ऊपर रिकमेंडेशंस जो हैं वो देंगे और काम इस पे आगे चलेगा। तो अब ये जाहिर है कि केस टू केस बेसिस पे, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स को हम नहीं मारना चाहते, तो वो फिर लेकिन वो उससे ये होता है बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं मेडिकल फील्ड से वो कहते हैं कि भाई बेड्स जो हैं फिर वो ऑक्यूपाइड रहते हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल वेजिटेबल कंडीशन में होते हैं, करने के तो कुछ लायक होते नहीं है। बहरहाल फिर भी जो है ये भाई केस टू केस बेसिस देखा जाएगा। अच्छा जनाब, बहुत सारा जो आज मैसी वेदर देखा गया तो उसकी वजह से बहुत सारे स्कूल जोन्स के अंदर जो थी बसेस जो थी वो क्लोज की गई थी, लेकिन सारी कैंसिल की गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल क्लोज थे। स्कूल खुले हुए थे लेकिन बसेस बहुत सारे रूट्स पे नहीं चल रही थी। पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जोन 3 जो है वहां पे बसेस कैंसिल हुई थी। डफरिन पील कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के जोन 3 में सेंट एंड्रयू, सेंट पीटर, सेंट बेनेडिक्ट, आरएफ हॉल, इन सब में जो है बसेस जो है कैंसिल रही। हाल्टन कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के जोन 3, सिमको काउंटी में तमाम की तमाम में बसेस कैंसिल रही। विलिंगटन डेफरन के भी तमाम जोन्स में बसेस कैंसिल रही। स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑन्टेरियो में भी तमाम बसेस कैंसिल रही। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि अब टू स्टॉर्म सिस्टम्स जो हैं वो भी कनाडा के अंदर एंटर होना हो रहे हैं और इसकी वजह से और ज्यादा स्नो, रेन, हाई स्पीड विंड्स जो हैं वो आने वाली हैं। इसका नाम है टेक्सस लो और वो कहते हैं जी कि वो कनाडा का बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर गया है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा है कि बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आने वाले हैं, उसकी वार्निंग्स दी हैं फॉर ऑन्टेरियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया एंड न्यू फाउंडलैंड। हुन आराम है जी? हाँ जी, वहां आफा भाजी को पूछो आज आगे, कल तो छुट्टी की थी ना इन्होंने, उन्होंने पूछो इन्हें बोलो आराम है ऐसे है। अच्छा जी, अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने आज अपने नए प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट किया है, गैब्रियल एटल। 34 इयर्स सिर्फ इनकी एज है और वन ऑफ द नहीं बल्कि द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बने हैं फ्रांस के। और इनको इसलिए लाया गया है क्योंकि मैक्रों साहब जो है वो अपना जो सेकेंड मैंडेट है अहेड ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें अपना एक नया चेहरा जो है सामने लेके आना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी कि क्योंकि इनके जो बहुत सारे इन्होंने अनपॉपुलर जो प्लान्स दिए थे लास्ट ईयर, जिसमें कि पेंशन प्लान था, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स थे, तो वो कहते हैं जी कि हम अपने चांसेस जो इंप्रूव करना चाहते हैं ईयू बैलेट से। और मैक्रों को जो है जो पार्टी है वो कोई इतना अच्छा नहीं चल रही है। जो फार राइट लीडर है मरीन लपेन, हालांकि वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं की जाती, लेकिन वो 8-10 पॉइंट से इस वक्त आगे चल रही हैं मैक्रों साहब की गलत पॉलिसीज की वजह से। और एटल साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं वहां पे फ्रांस के अंदर। एक तो यंग है, फिर हर कोई जो है वो कहते हैं जी इसके साथ बात कर सकता है, इजी है। इन्होंने रिप्लेस किया है प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बर्न ने, जो जिन्होंने के अभी 2 दिन पहले जो है रेजिग्नेशन दिया था। और इनकी सबसे बड़ी बात यह भी है कि ही इज एन ओपनली गे पर्सन, तो एक ओपनली गे पर्सन का प्राइम मिनिस्टर बनना फ्रांस में यह भी एक चेंज है, एक बड़ी बात है। क्या बात है मजदूर, तुम खुश हो थोड़ी खुशी वास्ते आज मैं खबर है लई है। ठीक है जी, ऐसे जर्मनी जो है जी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बदबख्तियां चल रही हैं और वहां पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने आज अपने ट्रैक्टर ट्रेलर्स लाके बर्लिन के अंदर खड़े किए और बहुत मेजर तरीके से जो है ये कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं और सारा का सारा सिस्टम आज इनकी वजह से क्रिपल्ड रहा। बहुत ज्यादा जो है वो रही ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रही और जो है काफी यहां पे मुश्किलें रही। हालांकि वहां पे जो बहुत एंग्री किस्म के ये सारे जो थे फार्मर्स जमा हुए हुए थे, जो कि कह रहे थे कि ये जो आप टैक्स ब्रेक्स जो हैं खत्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके ऊपर वो बड़े गुस्से थे। इसके अलावा और भी यूनियंस जो हैं कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनको ज्वाइन करेंगी, वर्कर्स फ्रॉम मेटलर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सारे भी इन्होंने भी कहा है कि हम भी आने वाले दिनों में स्ट्राइक्स करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि जर्मनी इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट, द बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो उसके अंदर ये स्ट्राइक्स ऐसे चलना जो है ये ज्यादा अफोर्ड तो नहीं जर्मनी कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है उसके कुछ कर सकते हैं। आज अनाउंस किया है रेल वर्कर्स ने भी कि 3 दिन का स्ट्राइक ये वेंसडे से वो भी शुरू कर देंगे। तो आप सोचें जरा कि तमाम के तमाम ये यूनियंस, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रेल, फार्मर्स, ये अगर सब सड़कों के ऊपर रहेंगे तो जर्मनी के मामलात कैसे चलेंगे। आज ये जो शुरू हुए हैं ये बर्लिन से शुरू हुए हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर्स जो थे वो लाए गए थे हैम्बर्ग, कोलोन, ब्रेमन के अंदर भी, और फिर उसके बाद इन्होंने मोटरवेज जो हैं उनको टारगेट करना शुरू किया था। यहां तक ये डिस्ट्रप्शन रही कि जो इनका बॉर्डर है जर्मनी का फ्रांस, पोलैंड और चेक रिपब्लिक के साथ, वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा जो है वो अफेक्टेड रही। तो अब वो कहते हैं जी कि प्राइसेस बहुत हाई हैं, इन्फ्लेशन ऊपर चली गई है और हमारे वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो जिस वक्त तक ये वेजेस नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक हम जो है काम पे वापस नहीं जाएंगे। हैं पैन ए गल है जनाब। वीकेंड के ऊपर जो जापान के अंदर अर्थक्वेक आया था उसमें अब रोज बरोज पता चल रहा है कि और ज्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं। आपको पता ही है कि 7.6 मैग्नीट्यूड का ये जो था अर्थक्वेक आया था और इसके अंदर अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं 161 से कुछ ज्यादा ही यहां पे मौतें हो चुकी हैं और 100 लोग जो हैं अभी तक यहां पे मिसिंग है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहां पे लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं नोटो पेनिनसुला के अंदर, खास तौर के ऊपर 18,000 हाउसहोल्ड्स जो हैं इन इशिकावा वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं, 66,100 होम्स आर विदाउट वाटर, 28,800 जो लोग गवर्नमेंट के शेल्टर्स के अंदर हैं वो इसलिए आए थे कि बिकॉज उनके घरों में उनको ना वाटर था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हीटिंग था, बल्कि कोल्ड फ्लोर्स के ऊपर जो है वो सो रहे थे। क्योंकि आपको पता ही है कि जापान में भी इस वक्त बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। 1,390 के करीब हाउसेज जो है वो कंप्लीटली या तो डिस्ट्रॉय हुए हैं या डैमेज हुए हैं। और इसके साथ साथ जापान के अंदर अब सुनामी की भी जो है वो वार्निंग दी गई है और वो कहते हैं जी वो इट इज एडिंग टू द डैमेज। इसके अलावा जिस दिन से ये संडे से जब से ये आया हुआ है अर्थक्वेक, उससे आफ्टर शॉक्स भी कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, फायर फाइटर्स, पुलिस वाले जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो कलैप्स्ड बिल्डिंग्स हैं उसके नीचे जो सर्वाइवर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ है यहां पे। तो अब जैसे जैसे इसके ऊपर अपडेट्स आएंगे हम आपको देते जाएंगे। आज इंडिया टुडे में जी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छपी है और वैसे तो आपको पता है कि अंडर अब्राहम एकॉर्ड्स जो दोस्ती करवाई थी ट्रंप साहब ने यूएई और इसराइल के बीच में और फिर उसके बाद बेतहाशा ट्रेड शुरू हो गई थी, आज यूएई के जो रूलर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा स्नब किया है इसको, नतन्याहू साहब को। अच्छा जी हुआ क्या है? हुआ यह है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, उनको एक रिक्वेस्ट की थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइफन है ये आपको देना चाहिए पैलेस्टीनियन वर्कर्स को जो यहां पे इजरायल में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं हमास का जो अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ है उसके बाद। तो आज मोहम्मद बिन जायद इस बात पर बड़ा भड़क गए हैं। उन्होंने कहा जी कि तुम ज़ेलेंस्की से पैसे मांग लो, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है उसको सारी दुनिया जो है फॉरेन एड दे रही है और जब से उसकी रशिया के साथ वॉर शुरू हुई है। अब ये जो चीज है ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि ट्रेड तो दबादब चल रही है यूएई और इसराइल के बीच में। तो लोगों को आज हैरत हुई कि जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख जायद अल नाहियान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, उन्होंने कैसे इस तरह का स्नब उनको दिया है। एक ऑफिशियल जो है यूएई के वो कहते हैं जी कि अरब कंट्रीज से अगर आप ये सोचते हैं कि वो रीबिल्ड करेगा और पे करेगा बिल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, तो ये आपका जो है वो गलत सोचने का तरीका है। हां, अगर पीस टाइम होता तो हम जरूर वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन इस सूरत में जो है वो मुश्किल रहेगा। और ये जो है वैसे, लेकिन अदरवाइज समझा जा रहा है कि यूएई ने ये स्नब इसलिए उसको कहा है, ट्रेड वेड तो चलती रहेगी इसराइल के साथ, लेकिन इसलिए दिया है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं वॉर के बाद और जिस तरह से पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा है, तो जाहिर है कि अरब वर्ल्ड जो है उसके ऊपर ज्यादा खुश नहीं है। तो ये जनाब आज काफी चौंकाने वाली वैसे खबर थी। डिफेंस मिनिस्टर युआन गैलन जो हैं इसराइल के, उनकी आज मुलाकातें जो हैं यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब उनके साथ तेल अवीव में आए। हमने आपको बताया हुआ है कि ब्लिंकन साहब जो हैं वो जरा टेंशन को नीचे करने के लिए मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। पहले उनकी मुलाकातें कतर में ऑफिशियल्स के साथ हुई थी, कल जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मिले थे और फिर तुर्की और ग्रीस भी जाएंगे, लेकिन आज इनकी मुलाकात तल अवीव में लीडर्स के साथ थी। यहां पे जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसराइल के गैलेंट साहब, उन्होंने कहा जी कि हम ये अपने ऑपरेशंस जारी रखेंगे गाजा के खान यूनस के एरिया में जब तक के तमाम हमास के लीडर्स को हम फाइंड ना कर लें और इसराइल के हॉस्टेजेस जो हैं उनको ना हम छुड़वा लें। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो ब्लिंकन साहब हैं, उन्होंने इनको कहा है कि भाई आप जरा थोड़ा सा मतलब हाथ होला रखो थोड़ा जहा, लेकिन गैलेंट साहब ने कहा कि तुम ईरान को प्रेशराइज करो क्योंकि उसके प्रॉक्सीज जो हैं अब हमारे ऊपर, जैसे कि यानी कि हिजबुल्ला वगैरह हमारे पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जंग है ये अब फैलती जा रही है, लेबनान तक जा रही है और हिजबुल्ला ने काफी इंटेंसिफाई कर दी है फाइटिंग जब से इन्होंने लेबनान पे हमले इसराइल ने शुरू किए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू के साथ जब ब्लिंकन साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भई आप सिविलियंस जो हैं उनको बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं गाजा में, उसको जरा कम किया जाए, और फिर दोनों ने डिस्कशन की हॉस्टेज रिलीज और ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा जो है उसके ऊपर भी। तो बहरहाल लग यही रहा है कि सिर्फ बातें हैं, कुछ खास जो है इसके ऊपर चेंज नहीं आ रही है। व्हाइट हाउस ने आज एक जो प्रेस रिलीज उसकी तरफ से आई है उसके मुताबिक ये समझ आ रही थी कि जैसे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन साहब अमेरिका के, उनको शायद सैक कर दिया जाएगा, मगर बाइडन साहब ने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं डिफेंस सेक्रेटरी को सैक करूं। लॉयड ऑस्टिन साहब जिनकी की उम्र 70 ईयर्स है, पता चला कि बगैर किसी को बताए ये हॉस्पिटल में थे बहुत सारे दिन। जॉन किर्बी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज रिपोर्टर्स को कहा कि ऑस्टिन साहब जो हैं वो उनको निकाल नहीं रहे हैं बाइडन साहब। ऑस्टिन साहब जो हैं ही सिट्स जस्ट बिलो बाइडन साहब इन टॉप कमांड ऑफ चेन ऑफ कमांड्स एट यूएस मिलिट्री, और ये कुछ दिन पहले आईसीयू में गए थे वॉल्टर रीड आर्मी मेडिकल सेंटर के अंदर ऑन न्यू ईयर्स डे, और कुछ डिटेल्स पहले नहीं आ रही थी, लेकिन आज की जो डिटेल्स आई हैं उसमें पता चला है कि ये प्रोस्टेट कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट वहां पे करने के लिए गए थे। इस वक्त वो आईसीयू में नहीं है लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स का कहना है कि ही इज रिकवरिंग वेल। अलबत्ता जब ऑस्टिन साहब से के स्टाफ से पूछा गया तो ऑस्टिन साहब से जब उन्होंने जवाब लिया तो ऑस्टिन साहब ने कहा कि हाँ ठीक है मुझे बताना चाहिए था। ऑस्टिन साहब की असल में जो पोजीशन है वो ऐसी है कि किसी भी वक्त एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उनको बुलाया जा सकता है कि इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड करें अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस है। तो ऐसे किसी बंदे का बगैर बताए एडमिनिस्ट्रेशन को गायब हो जाना, उसके ऊपर काफी आंखें खुली थी, लेकिन जाहिर है कि ये अपने इलाज के लिए गए थे। ऑस्टिन साहब ने अपने स्टाफ के थ्रू कहा है कि भाई आई शुड हैव डन बेटर, यानी कि मुझे जो है पहले बताना चाहिए था और मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसा जरूर करूंगा। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबाब। नान एंड कबाब जो है उनकी भी 2-3 लोकेशंस हैं, और ये जो नई लोकेशन है 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त इनका एम्बियंस है, खाना भी बहुत अच्छा है, और अगर आप इनको ऑर्डर डालना चाहते हैं आप इनके साथ तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 8416285 8191 पे। और इसके अलावा जनाब सीबीसी के ऊपर बड़ा जबरदस्त एक जो है शुरू हुआ है प्रोग्राम बॉलीवुड, आप जरूर जाएं और उसके ऊपर सीबीसी की या तो वेबसाइट पे या टीवी पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कुछ जो एक पंजाब से फैमिली आई थी और ये कैसे इन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया है, एंड हाउ दे आर सेलिंग बॉलीवुड ड्रीम्स, कैसे जो नई वो जो दुल्हन बनने वाली होती हैं लड़कियां उनको वो कैसे बताते हैं, कैसे उनके लिए कपड़े ज्वेलरी ग्रूमिंग कैसे वो करते हैं, उसके ऊपर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है प्रोग्राम जरूर देखें। इसके अलावा जनाब सुल्तान भाई हमारे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे होते हैं, 801 बोवे ड्राइव वेस्ट के ऊपर हैं, आप जरूर उनसे संपर्क करें अगर आपको चाहिए हैं बड़े अच्छे अप्लायंसेज तो आप उनसे उनके पास जरूर जाएं और अपने ऑर्डर्स जो हैं डाल सकते हैं। अच्छा जनाब पाकिस्तान में इमरान खान साहब और उनकी जो वाइफ है बुशरा बीवी, उनको इंडाइट किया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने रावलपिंडी के अंदर इन 190 मिलियन पाउंड्स तोशाखाना केस के अंदर। हियरिंग जो थी वो चल रही थी अडियाला जेल के अंदर ही, और ये 5 मेंबर स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम जो है नैप की, उसने कहा था कि ये रेफरेंस इनके अगेंस्ट जो लाया गया है इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज जो है मोहम्मद बशीर वो ये हियरिंग सुन रहे थे। कोर्ट ने जो डेफर की थी इंडाइटमेंट क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो लास्ट टाइम अपीयर नहीं हुई थी कोर्ट में। नैप के प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी अपनी टीम के साथ और इमरान खान के लॉयर लतीफ खोसा और उमेर नियाजी जो थे वो आज हियरिंग के ऊपर मौजूद थे। इमरान खान साहब ने ये अपनी डिस्क्वालिफिकेशन जो थी इसको चैलेंज किया था। 5 मेंबर लार्जर बेंच हेडेड बाय जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन विद जस्टिसेज शम्स महमूद शाहिद करीम शाहराम सरवर जवाद हसन जो हैं उन्होंने ये पिटीशन जो हैं कहा है कि अब हम टेक अप करेंगे जनवरी 12th को फिर से। इमरान खान साहब जो है, इसके अलावा उनको अरेस्ट किया गया है GHQ अटैक केस में इन May 9 प्रोटेस्ट, जो कि जिसकी के समझ नहीं आई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये तो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन कहा गया जी इनको फिर से अरेस्ट किया गया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है पिंडी में, उसने इमरान खान साहब को बुलाया था, जो कि साइफर केस में ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स है। ग्राफ्ट केसेस जो हैं May 9 के केसेस के लिए, उसके ऊपर भी और साइफर पे भी ये बात करना चाहते थे, खासतौर पे 9 मई के जो थे राइट्स थे उसके ऊपर। ये सारी जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी, ये वीडियो लिंक के थ्रू चल रही थी। और आरा बाजार पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान का फिजिकल रिमांड चाहते हैं। ATC के जो जज हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को रद्द किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रिजन में उनको सिर्फ इंटरोगेट कर सकते हैं, इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। PTI जी, उसने अब उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कुछ मिक्स रिएक्शन दिए। आपको पता ही, हमने कल आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया है जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के केस थे, जो कि सुन रहे थे नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में, जिसमें कि उनको डिस्क्वालीफाई किया था कोई भी ऑफिस होल्ड करने से। लेकिन आज जो है PTI के ऑफिशियल्स के बीच में काफी डिफरेंट ओपिनियन रहा ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स अंडर आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। PTI के सीनियर लॉयर हामिद खान साहब जो हैं, उन्होंने तो बड़ा इसको पसंद किया और अपने टीवी के एक प्रोग्राम में कहा कि दिस विल प्रमोट डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि इट इज फॉर द वोटर्स, नॉट फॉर द कोर्ट टू डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड इन इलेक्शंस। और ये जो डेमोक्रेटिक जो है वो सिलसिले जो हैं वो नहीं चलने चाहिए, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन से दूर रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है होप किया कि शायद जो है इनका जो आइकॉनिक बैट सिंबल है वो भी शायद पार्टी को दे दिया जाएगा। लेकिन हमाद अजहर साहब जो है, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, वो आज भी उन्होंने यही कहा है। उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया इस वर्डिक्ट को, डिफरेंट वो भी लोगों से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब वो लोग जिनको के डिक्लेयर ऑफेंडर कहा गया, उनको तो एलिजिबल कर दिया गया, क्योंकि वो ब्लू आइड बॉयज हैं एस्टैब्लिशमेंट के टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस हैं उनको रोका जा रहा है कि वो इलेक्शंस जो है कंटेस्ट नहीं कर सकते। सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है, उसने आज बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया और नोटिस लिया इस चीज का, क्योंकि उसको काफी ज्यादा जो है बैड नेम दिया जा रहा था, कि कहा जा रहा था कि सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मिसिंग पर्सन का बिल है वो मिस हो गया। उन्होंने कहा जी ना तो वो मिसिंग है ना तो वो पेंडिंग है, वो बिल जो था हमने नेशनल असेंबली को दे दिया था आफ्टर इट वॉज अडॉप्टेड बाय सेनेट, लेकर उसके अंदर हमने कुछ जो थी अमेंडमेंट्स की थी। सुप्रीम कोर्ट जो था उसको, उसने असल में इनसे फेडरल मिनिस्ट्री से पूछा था कि ये बिल जो है इसको पास क्यों नहीं किया जा रहा, तो फेडरल मिनिस्ट्री ने कहा था जी कि ये बिल इसलिए नहीं पास किया जा रहा क्योंकि सेनेट के चेयरमैन इसको पास नहीं कर रहे हैं। आज सेनेट ने कहा जी कि ये बिल्कुल फॉल्स इंप्रेशन दिया जा रहा है सेनेट और सेनेट के चेयरमैन के बारे में और सेक्रेटेरिएट के बारे में, हमारा इस सिलसिले में कोई भी रोल नहीं है। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था इंटीरियर मिनिस्ट्री से इन नेशनल असेंबली ऑन January 7, 2021 और इसको पास किया था लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऑन November 8, 2021। ये बिल जो है सेनेट को भेजा गया था November 10, 2021 को और इट वॉज टेबल्ड इन सेनेट ऑन July 29, 2022 और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने इसको वापस भेज दिया था क्योंकि सेनेट जो है वो मैंडेटेड नहीं है टू ब्रिंग गवर्नमेंट बिल्स ऑन एजेंडा ऑन इट्स ओन, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन सेनेट को भेजनी पड़ेंगी। और उसके बाद फिर हमने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर रेफर किया था, तो हमारे साथ इस तरह का कोई भी बिल नहीं है और इसलिए हमको जो है ज्यादा एलिगेशन देने की जरूरत भी नहीं है। पिशावर हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं अरशद अली, उन्होंने आज वही जो PTI का बैट का सिंबल है उसके ऊपर वो सुन रहे थे पटिशन सारी, उस पर उन्होंने कहा जी कि PTI क्यों इंसिस्ट कर रही है कि उसको बैट का सिंबल ही इन अपकमिंग इलेक्शन के अंदर दिया जाए। PTI ने आपको पता ही है कि रिट पिटीशन दी थी कि उसका यह सिंबल किया जाए रिस्टोर, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि इनके सही से नहीं हुए हैं इसलिए हम इनको जो है सिंबल नहीं इशू कर सकते और ना ही अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। PTI के काउंसिल बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्टी जो है वो इलेक्शन बगैर इसके नहीं लड़ पाएगी एंड इट इज ओनली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के उसको जो है ये इलेक्शन सिंबल दिया जाए, पार्टी की यह आइडेंटिटी है, हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगी कि वो वोट्स किसको दें। और पायन यही तो वो करना चाह रहे हैं कि लोगों को समझना है कि उन्होंने किसको देना है और फौरन जो ECP है ये सर्टिफिकेट इशू करे और हमें ये दे। उन्होंने आज ये भी कहा बैरिस्टर अली जफर ने कि ECP के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उसके ऊपर कोई बात करे या उसको बोले कि ये नल एंड वॉइड है। जो इलेक्शंस हैं वो जो है उनको पार्टी के अंदर होल्ड करना इनका जो है काम नहीं है, उसको मॉनिटर करना। और ये भी ये नहीं कर सकते कि ये पार्टी का जो सिंबल है उसको विद होल्ड करें विदाउट एनी रीजन। ईसीपी जो है उन्होंने कहा जी कि वो वैसे भी जो पार्टी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ईसीपी का सिर्फ जो काम होता है वो मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है, पार्टी के इंटरनल मामलात में और उनकी बाकी चीजों में इंटरफेयर करना उसका काम नहीं है। तो बहरहाल जी ये बहस अभी चल रही है। नैब जो है जी उसने आज क्लोज कर दिया है जनाब शरीफ साहब का जो ट्रस्ट केस था इन्वॉल्विंग नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली थी उसने। आज उन्होंने ये सारी की सारी डिटेल्स जो है नैब ने अपनी वेबसाइट पे दी हैं, जिसके के बारे में पहले कहा गया था कि जी एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है ऑन द डिसीजन मेड इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ऑफ द ब्यूरो विच वॉज हेल्ड अर्लियर, और आज की जो थी उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये हम सब केसेस रद्द किए जा रहे हैं। नैब ने ही ये ऑथराइज किया था ऑन मार्च 31, 2000 में जब कंप्लेंट की गई थी शरीफ फैमिली के लिए कि इन्होंने बहुत सारा जो है गैर कानूनी या इलीगल मनी जो है वो जमा किया है इलिसिट मीन से और उसको डाला है शरीफ ट्रस्ट के अंदर, उसकी कोई ऑडिट भी नहीं करवाई है। तो ये लगता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो है इनकी वेल्थ है जिसके के ऊपर काम करने की जरूरत है। इनके जो है सारे के सारे एसेट्स वो रखे गए हैं बेनामी प्रॉपर्टीज के अंडर और वो उसको फर्दर रखा गया है ट्रस्ट के अंडर। पैनामा के अंदर आपको पता ही है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं रिपोर्ट के अंदर ये सामने आई थी। उसके बाद फिर एक पाकिस्तान के अंदर पैनामा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी वो बनाई गई थी पैनामा जीआईटी, उन्होंने बहुत ज्यादा फिर एतराज किया था, उन्होंने कहा था कि ये क्यों नैब इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में डिले कर रहा है। जीआईटी ने यह भी कहा था कि फौरन इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन आज नैब ने जो है ये जनाब सारे का सारा जो है इसको टर्मिनेट किया है अंडर सेक्शन 31B ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2022 थैंक्स टू नवाज शरीफ ब्रदर शहबाज शरीफ साहब जो कि लीड कर रहे थे पीडीएम की गवर्नमेंट, जिन्होंने कि ये तमाम के तमाम जो केसेस हैं उनको नल एंड वॉइड करने के लिए बिल लेकर आए थे। एमक्यूएमपी जो है अब वो सीट एडजस्टमेंट्स कर सकती है पीएमएलएन के साथ इन 3 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ NA 242 जहां पे के पीएमएलएन के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसमें फाइट कर सकते हैं। आपको पता ही है बहुत दिनों से ये खबरें आ रही थी कि एमक्यूएमपी और पीएमएलएन के बीच में जो है अलायंसेस चल सकती हैं, तो आज ये बात जो है और खुल के सामने आ गई है। ये जो है कंटेस्ट किया वो करेंगे शहबाज शरीफ साहब कराची का जो किमाड़ी का एरिया है जो कि एमक्यूएमपी का बड़ा ही स्ट्रांग होल्ड है वहां से। इसके अलावा पीएमएलएन ने बहुत सारे अपने जो है बाकी के और भी कैंडिडेट्स जो है उनको फील्ड किया है 5 नेशनल असेंबली के उसके लिए सीट्स के लिए फ्रॉम मलीर NA 231 NA 242 और पीएमएलएन जो है उन्होंने कहा है कि हम और भी जो दूसरी सीट्स हैं जैसे कि मीरपुर खास नवाब शाह सक्कर उधर से भी हम लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक दफा पहले भी कराची की NA 249 से 2018 में इलेक्शंस रन करने की कोशिश की थी लेकिन ये हार गए थे पीटीआई के फैसल वाबडा से। तो अब ये सीट एडजस्टमेंट के अंदर जो है ये, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि एमक्यूएमपी को पंजाब में ये कितनी सीटें देने को तैयार हैं। ठीक है जी। रेहाना इम्तियाज डार जो कि आपको पता ही है कि पीटीआई के बड़े जो साथी थे इमरान खान के उस्मान डार साहब, जिन्होंने के बाद में कहा था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई के साथ मैं पीछे हट रहा हूं, लेकिन उनकी वालदा जो हैं आज रेहाना इम्तियाज डार उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शंस लड़ रही हूं। इनका जो पहले जो नॉमिनेशन पेपर्स इन्होंने डाले थे NA 71 Sialkot 2 से वो अप्रूव नहीं हुए थे लेकिन आज जो है इसको अप्रूव किया गया है और इनको इन्होंने कहा है जी कि मैं ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से कि मेरा बेटा भी ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट जो है ये इलेक्शंस लड़ता था तो मैं भी यहां से लड़ूंगी। और इन्होंने पहले जो आरओ था यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था उन्होंने इनके पेपर्स रिजेक्ट कर दिए थे लेकिन आज मान लिए गए हैं। इसके अलावा इनकी डार साहब की जो सिस्टर इन लॉ हैं रूबा उनको भी उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो हटा दिए गए थे और कहा गया था कि जी आपको लड़ने की हम नहीं इजाजत दे सकते हैं। तो आपको पता ही है कि इनकी वालदा जो हैं ये रेहाना इम्तियाज डार, वो इतनी प्यारी एक तस्वीर थी कभी हम अगर दिखा सकते तो बड़ा अच्छा होता। आज वो जैसे वो बूढ़ी सी औरत है और वो ऐसे वो लेके खड़ी हुई है पेपर, ये देखें जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको नजर आएगी, ये देखें जरा तो इन्होंने कसम खाई थी, इन्होंने कहा था कि जो मर्जी मेरे साथ जुल्म कर लें। आपको पता है इनके घर में सियालकोट पुलिस घुस गई थी, तोड़फोड़ की थी, इनके कपड़े तक फाड़े थे। तो उन्होंने कहा था जो मर्जी कर लें, मैं पीटीआई से पीछे नहीं हटूंगी, मेरा बेटा डरता है तो डर जाए, पीछे हट जाए, मैं पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगी। तो ये अब जो है इन्होंने आज कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज हैं जी, वो बहुत होपफुल हैं कि यूएई जो है अपना ये जो $2 बिलियन का रोल ओवर डिपॉजिट्स हैं इनको फिर से ऐसे रखेगा। पाकिस्तान ने इनके साथ अग्री किया था कि 3% और 6.5% के इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये इनके साथ रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे इन लोन्स को। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने बातचीत की थी यूएई के ऑफिशियल्स के साथ और उनको कहा था कि ये रोल ओवर जो आपके लोन्स हैं ये हमारे बैंक्स में रखें। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रेकोडिक के मसले हैं उनको आगे लेके जाया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है आपको पता ही है कि उसके पास जो है तकरीबन $1.3 trillion के जो है वो मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसको कि वो करना चाहता है, एक्सप्लॉयट करना चाहता है और वो अट्रैक्ट करना चाहता है $170 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट। तो उसी सिलसिले में वो पाकिस्तान के साथ भी इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो है उनके बीच में एक ट्राइलेटरल डिफेंस डील्स जो है वो भी हो सकती हैं, जिसमें कि ये तीनों कंट्रीज मिलकर जो भी कोई डिफेंस की नीड्स होंगी उनको आगे चलाएंगे। आज इनके बीच में सेकेंड मिलिट्री की मीटिंग जो है ट्राइलेटरल डिफेंस कोलैबोरेशन हो रहा था GHQ रावलपिंडी के अंदर, तो उसके अंदर जनाब इनकी बातचीत चल रही थी। तो ऐसे है हिंदुस्तान के अंदर। तो जनाब जो आज ऑपोजिशन है उसने जम के कुछ एतराज किए मोदी जी के ऊपर। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिक अर्जुन खड़गे, उन्होंने जो ये जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में कुछ टेंशन चल रही है उसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि जो भी कोई मसला होता है मोदी जी उसको दिल पे ले लेते हैं, हैं उसको दिल पे ले लेते हैं, और ये जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें चीजों को दिल पे नहीं लेना होता है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो चीजें हैं हमको अपने नेबर्स के साथ अच्छी तरह दोस्ती बना के रखनी चाहिए, क्योंकि नेबर्स हम अपने चेंज नहीं कर सकते। अगर आमिर आप दिखा दें तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। और इसके अलावा जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो चीफ हैं शरद पवार साहब, लेकिन उन्होंने बड़ा इनको कंडेम किया, उन्होंने कहा कि आपने कैसे इनको एंडोर्स किया है मालदीव्स वालों को, क्योंकि मालदीव्स जो है उसने बदतमीजी की है मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मालदीव्स ने कहा था कि भई अपनी ये आप फोर्सेस हटाएं यहां से, इंडिया को कहा था और मोदी जी को कहा था कि भई आपका ये कब तक चलेगा ऐसे, हटाओ इनको यहां से फोर्सेस। तो उस पर जो इंडिया ने बड़ा ऑफेंस लिया था उसके ऊपर। अब ये हो रहा है कि इसके साथ साथ ये सारे जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन के इनको राम मंदिर जो है उसकी ओपनिंग के लिए भी बुलाया जा रहा है। कुछ जो लीडर्स हैं वो तो जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हुए आज जो हमारी दीदी हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने कहा जी कि ये मोदी जी और बीजेपी के पुराने तरीके हैं, ये जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाइयां करना चाहते हैं। अगर कोई फेस्टिवल इन दोनों कम्युनिटी को मिलाने वाला होता तो मैं जरूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करती, लेकिन चूंकि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इसलिए ये मैं जो है इसमें राम मंदिर की ओपनिंग पे मैं हिस्सा नहीं लूंगी। और मुझे पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अपना इलेक्शन का वोट जीतने के लिए आप ये कर रहे हैं, लेकिन हम जो है इस तरह की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करते हैं, तो मैं जो है ये अटेंड नहीं करूंगी। जनता दल पार्टी के लीडर अजय यादव जो हैं उन्होंने तो आज जनाब बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने तो आज सीधा इल्जाम लगा दिया है मोदी जी के ऊपर कि राम मंदिर की ओपनिंग के ऊपर मोदी जी की पार्टी बीजेपी धमाके करवाएगी और इसका जो नुकसान होएगा उसका ये पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेंगे और उसका पूरे का पूरा इल्जाम ये पाकिस्तान और मुसलमानों के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद जो है ये अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा जी कि ये सारा झूठ है और ये बिल्कुल बायस है जो कि आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा या बीजेपी ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन जाहिर है बाकी के लीडर जो हैं वो बड़े जो हैं वो गुस्से में और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है ये ठीक नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट आई थी अयोध्या में के ऊपर तो वो भी कुछ इतनी खुशी वाली नहीं थी, क्योंकि अदालत ने कहा था कि हमको कोई ट्रेसेस तो नहीं मिले थे कि कोई मस्जिद जो है वो मंदिर को ढा के बनाई गई है, फिर भी उसको ढा दिया गया था। तो काजी कि अच्छा ठीक है अब मंदिर बना लो इस पे। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर शशि थरूर साहब जो हैं उन्होंने जो ये कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं रुपिंदर सिंह कूनर, बीजेपी के राजस्थान के जो मिनिस्टर थे सुरेंद्र पाल सिंह के ऊपर करनपुर में जो ये बाय इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर शशि थरूर साहब ने कहा जी कि लोगों को समझना चाहिए, जो यानी कि पार्टीज की बात कर रहे थे कि वोटर्स जो हैं वो उनको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, लेकिन क्या करें अफसोस की बात तो यही है कि बीजेपी जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसको ये बात समझ नहीं आती है। इसके अलावा फॉर्मर राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत ने, उन्होंने भी कहा जी कि ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी बेतहाशा एरोगेंट हो गई है और उसने सारी की सारी मोरालिटी जो है उसको अबंडन कर दिया है, तो दिस इज अ स्लैप बाय पीपल ऑन द फेस ऑफ बीजेपी। आपको बताइए कि 2023 में जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी ने राजस्थान के अंदर 115 सीट्स जीती थी और कांग्रेस जो थी वो ऑपोजिशन में बैठी थी 68 सीट्स के साथ। तो अब वो कह रहे हैं जी कि ये अब ये चीज बता रही है कि हो सकता है बीजेपी ना जीते। बहरहाल जी, मैं आपको बता रही हूं कि थर्ड टर्म भी बीजेपी ही जीतेगी और कोई भी उनके सामने जो है कोई इतना लायक फायक नहीं है जो आके खड़ा हो सकता है, तो जो है कोई किसी की बेस नहीं है इंडिया के अंदर। तो अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप मेरे प्लीज मार्क माय वर्ड्स कि बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा जनाब, आपको हमने कल सारे का सारा सुनाया था बिल्किस बानो का केस, उससे पहले भी हमने कई दफा आपको सुनाया। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तमाम के तमाम 11 कॉन्विक्ट्स जो हैं बिल्किस बानो के केस में, जिसको के गुजरात की गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, उसको वापस डालो जेल के अंदर, इसके ऊपर एक्स के ऊपर एक यूजर ने हमारी बाजी जो है कंगना रनावत उनसे पूछ लिया कि आप तो बहुत ज्यादा औरतों के ऊपर काम करते हैं और उनके जो है के लिए बात करते हैं फेमिनिज्म के ऊपर, तो कंगना रनावत जी साहिबा आप जो हैं क्या आप बिल्किस बीबी के ऊपर जो है बिल्किस बानो के ऊपर कोई आप फिल्म बनाएंगे? उसके ऊपर कंगना रनावत ने बात करते हुए कहा कि कोई भी स्टूडियो या कोई भी ओटीटी का प्लेटफॉर्म है वो मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं है। मैं पिछले 3 साल से मेरा जो स्क्रिप्ट है वो रेडी है, हमने इस पर रिसर्च किया है, काम किया है, लेकिन ना तो नेटफ्लिक्स ना तो प्राइम वीडियो कोई भी ये इसको लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमारे पास बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्म्स हम नहीं बनाते हैं। पायाने की गल हुई है जी। उसके बाद वो कहते हैं जी कि जियो सिनेमा ने तो कहा जी कि हम कंगना के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं और जी टीवी जो है इस वक्त मर्जर्स में चल रहा है, तो मुझे बताएं आप क्या करें। कंगना बहन, इस वक्त हम आपके साथ हैं क्योंकि अभी जो सैम मानेकशॉ के ऊपर फिल्म आई थी वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ थी, जिसमें कि बताया गया था कि जी किस तरह से हिंदुस्तान ने मदद की उसकी जो है बांग्लादेश की और कैसे जो है वो उसको कार्व किया आउट ऑफ पाकिस्तान, तो ये फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी। इसके अलावा आप हर वक्त आईएसआई के खिलाफ बनाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं, तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस है? तो बहरहाल तुमको जो है ऐसे ही जो है वो रद्द कर रहे हैं कंगना जी, तो आप थोड़ा अपना कनेक्शन यूज करो, ठीक है। और जनाब, फरहान अख्तर साहब टर्न 51 टुडे, तो आज उनकी बहुत जबरदस्त पार्टी की पिक्चर्स जो हैं वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर नजर आई अपनी फैमिली के साथ। उसके अंदर उनके वालिद साहब जावेद अख्तर, उनकी जो असल मदर हैं हनी ईरानी, उनकी सिस्टर जोया अख्तर और इनकी वाइफ जो है शुभानी डांडेकर, उनकी फैमिली, उसकी बहन जो है अनुषा जो कि एक्टर है और वीजे भी है, और इसके अलावा इनकी जो सुतेली वालदा हैं शबाना आजमी जी, वो भी ये सब इनके साथ जो हैं नजर आए। और 3 केक थे यहां पे, उन 3 केक्स में से 1 केक जो था उसकी शेप 50 थी, और लग रहा है कि जैसे ये तस्वीरें जो हैं ली गई हैं फरहान अख्तर के मुंबई के घर से। और शबाना आजमी जी ने आज बड़े इनको प्यारे मैसेजेस दिए, उन्होंने कहा सालगिरह मुबारक बेटू, जीते रहो, खुश रहो, बहुत सारा प्यार, और जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड उन्होंने भी बहुत सारी इनको बधाइयां दी इस मौके पे। आज एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है जी फवाद खान साहब का, जिसमें कि उनसे पूछा गया कि जब तुम हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड में काम कर रहे थे तो क्या ऐसा तो नहीं था कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे थे वो तुम्हारे इतने जो है ऑरा से और करिश्मा से बड़ा थ्रेटन्ड फील करते थे? तो फवाद खान ने कहा कि ये बड़ा ही मुश्किल और ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स हर इंडस्ट्री में होती है, पाकिस्तान में भी है, कहीं पर भी दुनिया में हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी फिल्मों की पीआर बहुत ज्यादा की जाती थी, हालांकि मैं उनको बताता था कि पोस्टर पर से ना तो मेरी तस्वीर डालो, ना इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, ना फेसबुक पे, लेकिन जो मैनेजर्स होते थे उन फिल्म के वो कहते थे फवाद साहब आपको पता नहीं है, हमको प्रमोट करने दें, इट्स जस्ट अ नॉर्म। 2014 में आपको पता है कि फवाद खान ने बॉलीवुड का डेब्यू किया था विद सोनम कपूर की जो फिल्म आई थी खूबसूरत, उसके बाद करण जौहर की जो 2 फिल्में थी ए दिल है मुश्किल एंड कपूर एंड सन्स, उसमें इन्होंने काम किया था, और फिर उसके बाद ये एक जो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं इंडिया के, मनीष मल्होत्रा, उनके साथ इंडियन कुटूर वीक जो 2016 में हुआ था उसमें दीपिका पाडुकोन के साथ इन्होंने जो थे, ही वॉज द शो स्टॉपर एक्चुअली, और एक जो था अवार्ड्स का शो वो भी इन्होंने हिंदुस्तान में किया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट थे उनके ऊपर बीजेपी की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था और फिर कोई भी वहां पर नहीं जा सका था। तो ये आज इन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक आंसर दिए हैं जी, क्या बात है, वाह जी वाह। और जनाब आज एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल पीसीबी से रिलेटेड आया है, और ये स्कैंडल जो है ये कहता है कि जो ओलंपिक्स के लिए पैसे थे वो पीसीबी ने अपने लिए यूज कर लिए, एंड दिस वॉज 205 मिलियन रुपीज जो कि जो ओलंपिक्स की जो थी स्पोर्ट्स उनको डेवलप करने के लिए रखा हुआ था, पीसीबी ने इसको ले लिया और सारे का सारा जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी जो विनिंग टीम थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की। उसके बीच में इसके ऊपर काफी शोरवर उठा था क्योंकि वो कहते हैं जी पीसीबी हमेशा जब उनको सेनेट की नेशनल असेंबली कमेटी बुलाती है तो वो कहते हैं जी कि आप हमको क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट हमको एक रुपया भी नहीं दे रही, हम खुद अपना पैसा जनरेट करते हैं, नेशनल एक्सचेकर से हम एक रुपया भी नहीं लेते हैं, सो वी आर नॉट एंसरेबल टू यू। तो वो कहते हैं जी कि ये जो अब इतनी बड़ी रेवलेशन आई हैं, ये पैसा इनका लेना बनता नहीं था। ओलंपिक्स जो टीम के जो स्पोर्ट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आज इस बात का बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई रिच हैं, इनको ओलंपिक्स के जो स्पोर्ट्स हैं वो मुल्क में डेवलप करने देने चाहिए, इंस्टेड के ये सारे का सारा पैसा ले लेते हैं। ये तमाम की तमाम पैसा और ये डील की जो डिटेल्स हैं ये सामने उस वक्त आई हैं जिस वक्त जो थी ओलंपिक टीम के जो एथलीट्स थे वो बेचारे प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द 12th साउथ एशियन गेम्स इन नेपाल। तो वो कहते हैं जी कि बाकी गेम्स इसीलिए मुल्क में डेवलप नहीं हो सकती कि पीसीबी सारा का सारा पैसा जो है वो ले लेता है। तो अब जनाब स्यापे पड़ेंगे, अब इनके पूछा जाएगा। और जनाब बड़े ही वेटरन न्यूजीलैंड बैटर ग्रांट ब्रैडबर्न जो कि पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच थे, उन्होंने आज रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है। उन्होंने कहा जी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टू पाकिस्तान फॉर गिविंग मी द चांस टू कोच पाकिस्तान टीम, और वो कहते हैं इट वॉज एन अमेजिंग चैप्टर ऑफ माई लाइफ दैट आई एम क्लोजिंग, आई एम वेरी प्राउड फॉर ऑल माई अचीवमेंट्स एंड ग्रेटफुल फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क विद द आउटस्टैंडिंग पीपल इन पाकिस्तान। और इनिशियली जो था पीसीबी ने इनको हेड कोच बनाया था फॉर 2 years इन मई 2023, उसके बाद फिर कोई चेंजेस लेकर आए थे। तो आज इन्होंने कहा जी कि मैं अब और ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकूंगा क्योंकि मैं रिटायर कर रहा हूं। नूनावुड की जो कर्लिंग एसोसिएशन है उसने जनाब विड्रॉ किया है फ्रॉम कनेडियन विमेन कर्लिंग चैंपियनशिप से। कर्लिंग काउंसिल जो है उन्होंने अपनी जो एक प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि 18 मेंबर टीम जो है बाकी की वो पार्टिसिपेट करेगी फ्रॉम फरवरी 16 टू 25 के कॉम्पिटिशन जो हैं, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी। लेकिन जो नूनावुड कर्लिंग एसोसिएशन है उन्होंने कहा जी कि हम हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के मैचेस के अंदर हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन दिस ईयर इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एक तो हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ही छोटा है और फिर प्री मेच्योरली 4 फैसिलिटीज जो है नूनावुड में जो क्लोज हो गई थी उसकी वजह से फिर हम ये अब जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गोल्फ प्लेयर्स टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स के बारे में उनकी और नाइकी की जो दोस्ती थी 27 years से वो अब खत्म होने जा रही है। ही दे बोथ ऑफ देम दे आर पॉइंटिंग वेज। टाइगर वुड्स ने सोशल मीडिया पे इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया, खासतौर पर नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट का। उन्होंने का उसका ग्रेट जो है वो विजन है और ना सिर्फ नाइकी के लिए बल्कि नाइकी गोल्फ पार्टनरशिप के लिए। आई हैड सम अमेजिंग मोमेंट्स एंड मेमोरीज व्हाइल एंडोर्सिंग फॉर नाइकी, और नाइकी ने भी उसके जवाब में बड़ी अच्छी चीजें टाइगर वुड्स के बारे में कही हैं। उन्होंने कहा कि इट वॉज अ हेल ऑफ अ राउंड विद यू टाइगर, तुमने हमेशा अपने कंपेटिटर्स को, स्टीरियोटाइप्स को, कन्वेंशंस को, ओल्ड स्कूल ऑफ थिंकिंग को चैलेंज किया था, तुमने गोल्फ के इंस्टीट्यूट को चैलेंज किया था और तुमने नाइकी को, हमको भी चैलेंज किया था, और सबसे बढ़ के ये कि तुम हर वक्त हर गेम में अपने आप को भी चैलेंज करते थे। तो इट वॉज अ प्रिविलेज टू वर्क विद यू, वी आर सो ग्रेटफुल। टाइगर वुड्स जो हैं जी उन्होंने 15 मेजर चैंपियनशिप्स जीती हैं और 82 PGA टूर्नामेंट्स जो हैं वो भी जीते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फ प्लेयर्स एंड वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट्स आल्सो।
आई कुड से ही इज द ग्रेटेस्ट।
बिल्कुल मुझे भी यही लगता है।
देयर आर सो मेनी पीपल दैट दे
लेकिन इससे बड़ा नाम नहीं आया सामने।
जैक निकलस वाज, शार्क वाज देयर, देयर वर सो मेनी अदर नेम्स
जो कि अब लिव खेल रहे हैं, लिव गोल्फ खेल रहे हैं।
But the thing is that
इसको बहुत फेम मिली।
एक तो he wasn't white, and he brought so many colored people in the in the sports, and जब भी इसका नाम आता था तो बस ये समझ लीजिए कि टीवी रेटिंग्स वगैरह
सब ऊपर चली जाती थी। जी तो ये है जनाब हमारी आज की खरबें।
एनीवे थैंक यू सो मच शैले जी, एंड इसके साथ ही अब हम आपको लिए चलेंगे प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद, एंड जीशान आपको एंटरटेन करेंगे पूरी रात को। आप 24 hours 7 days a week ई आवाज टीवी और 770 AM सुनते और देखते हैं, इसी तरह देखते रहिए। एंड नंबर आपको मालूम है 6478724900।
थैंक यू माय सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच। वक्या की बातें कल इंशाल्लाह ताला। उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
लफ्जों में लिख देंगे अपना ये हाल रे, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का।
हो गया कुछ। कुछ मिल गया कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। नस नस में तू बन के लहू समाई है समाई है मेरी नस नस में तू बन के लहू समाई है।